अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 2
ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊं
प्रणम्य वीरं परमावबोधं आशादरो सोपज्ञधर्मामृतधर्मशास्त्र पदानि किंचित् प्रगटीकरोति। पंडित आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक शास्त्र है और अभी हम पृष्ठ संख्या 3 पर आ गए हैं। यहाँ सम्यक दर्शन संबंधी हमने कल चर्चा की थी, यहाँ अभी हम नीचे के पैराग्राफ पर हैं, नीचे से तीसरी लाइन पृष्ठ संख्या 3 नीचे से तीसरी लाइन। हाँ आगे पढ़ेंगे कहाँ से। हाँ ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है। वचनात्मक के लिए वहाँ परार्थ शब्द आता है और जहाँ ज्ञानात्मक की बात आती है, ज्ञान के जो भेद होते हैं ना, वचनात्मक और ज्ञानात्मक, नयों के भी होते हैं वचनात्मक और ज्ञानात्मक, वैसे यहाँ वचनात्मक को परार्थ कहते हैं और ज्ञानात्मक के लिए स्वार्थ कहते हैं। यहाँ पढ़ेंगे देखो नीचे से 3, 3, 6, 7 भी लाइन ना। उसे यह अभिप्राय है कि श्रुत स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। पहले ये बात आई थी कि सम्यक श्रुत में ही साधु तत्पर रहते हैं, सम्यक श्रुत में तत्पर रहते, तो श्रुत के दो अर्थ लिए, यानी दो प्रकार बताए, ज्ञानात्मक और वचनात्मक, जिसको स्वार्थ और परार्थ कहते हैं। ये जो न्याय के शब्द है, ये सब अपने यहाँ न्यायों का अभ्यास नहीं हुआ ना, परीक्षा मुखादि शास्त्रों का अपने यहाँ स्वाध्याय नहीं हुआ है, ये स्वार्थ परार्थ आदि उसमें से बातें हैं, ये नए हैं आप लोगों के लिए शब्द। सर्वदा स्वार्थ श्रुत ज्ञान भावना में दत्त चित्त साधु भी, यानी उनके मुख्य प्रयोजन के आत्मा में ही लीन रहना, बारंबार शुद्ध उपयोग होता रहता है उनका, वे भी कभी कभी अनादि वासना के वशीभूत होकर शब्दात्मक परार्थ श्रुत में भी लग जाते, इन्हें विकल्पात्मक जो वचनात्मक होते हैं उन उसमें भी उनका उपयोग चला जाता है, क्योंकि सतत कंटिन्यूस अभी शुद्ध उपयोग में ले रहे तो श्रेणी चढ़कर मोक्ष ले जाएंगे, यहाँ तो छठा सातवा होता रहता है, इसलिए अधिक काल शुद्धोपयोग में नहीं रह सकते तो शुभोपयोग में आते, और शुभोपयोग में ये शब्दात्मक परार्थ श्रुत में भी लग जाते हैं। वो तो शब्द के द्वारा शब्द को, हाँ
शब्दार्थ का अर्थ आइदर उपदेश देना या शास्त्र लिखना, यहाँ पर
यह शब्दों में विचार करना ऐसा भी होगा, वचन में उपयोग वचनात्मक में लगाए, जिसको हम जल्प कहेंगे, भाषा में वो चल रहा है उसका, तो भाषा क्या करते हैं, भाषा के द्वारा पर अर्थ को बताती है, ज्ञान तो अपने को ही बताता है
भाषा का।
हाँ बताएंगे ना, परंतु वो शब्द शब्द को बताने से क्या है, वो तो ज्ञान उसको जानेगा। ख्याल में आती है बात? उसका एग्जैक्ट एक्चुअली अर्थ वो न्याय शास्त्रों में से पढ़कर बताना पड़ेगा, स्वार्थ और पदार्थ क्यों कहते हैं, या तो परीक्षा मुख में से सिद्धांत प्रवेशिका बड़ी वाली उसमें है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, उसमें शायद मिलेगा तो मिलेगा। यहाँ बड़ी सिद्धांत प्रवेशिका मेरे ने ख्याल से कि तुम्हें कुछ ढूंढ कर मिलेगी, मगर अभी मिलेगी देखनी पड़ेगी।
उसमें नहीं पढ़ा तो ये बताना चाहते हैं कि वो सर्वदा तो स्वार्थ शुद्ध ज्ञान भावना में यानी अपने
अंतरंग में लीन
करने की कोशिश में प्रयत्न में पुरुषार्थ में रहते हैं,
वचनात्मक जाते तो शुभ उपयोग में आते हैं।
ये ऐसी भावना में दत्त चित्त यानी जिन्होंने अपना चित्त उसमें दिया है, ऐसे साधु भी कभी कभी क्या होता है अनादि वासना की वशीभूत होकर यानी अनादि से आगे उनकी मोहन करना है तो उस वासना में वशीभूत होकर शब्दात्मक पदार्थ शुद्ध में भी लग जाते हैं। यहाँ तो शब्दार्थ शब्दात्मक कहने से आप जो कह रहे हो
जल्पात्मक भी हो सकते हैं, विकल्प हो सकता है,
या छात्र लिखना भी हो सकता है। तो परार्थ शुद्ध यानी वही हो गया ना, द्रव्य शुद्ध जिसको
यानी शब्दात्मक यानी दूसरों से भी वो तो उपयोग बाहर चला गया। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये क्या है, शब्दात्मक हो गया ना, परार्थ हो गया ना, साथ है ना अपने में। हाँ देखेंगे हम पढ़ेंगे आगे, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। देखो अनादि वासना के वशीभूत वहां से पढ़े में शब्दात्मक परार्थ श्रुत में भी लग जाते हैं। इस परार्थ शुद्ध ज्ञानी की अपेक्षा जो सुना जाए उसे श्रुत कहते हैं, अतः श्रुत का अर्थ शब्द होता है। शोभनीय श्रुत को सुश्रुत कहते हैं, शोभनीय नहीं, उन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ज्ञानात्मक एक शब्दात्मक, ज्ञानात्मक उसको शोभनीय कहा। अर्थात शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा का कथन और तद विषय पूछताछ आदि रूप से मुमुक्षुओं के लिए अभिमत जो श्रुत है वही सुश्रुत है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इसमें श्रुत में सुश्रुत शब्द लगाए, भले वो शब्दात्मक भी क्यों न हो, परंतु वो जो सच्चा सही जिसको कहेंगे, केवल श्रुत कहने से तो अन्य भी कहेंगे हमने जो सुना है वो श्रुत हो गया, इसलिए सुश्रुत शब्द लगा लिया। हाँ यानी दोनों शास्त्र ज्ञान के लिए भी और आत्मज्ञान, परंतु आत्मज्ञान पूर्वक उसको सुश्रुत कहेंगे। देखो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आचार्य कुनकुंद ने प्रवचन सार में लिखा है कि साधु वही है जिसका मन एकाग्र है, और एकाग्र मन वही हो सकता है जिसको आत्म तत्व का निश्चय है। क्योंकि केवल बाह्य किसी पदार्थ पर एकाग्र करना वो तो अनादि से चल रहा है ना, पर में एकाग्रता चल ही रही है उसकी, तो वहां राग द्वेष हो रहे हैं। यहाँ तो भीतराग्रता के सहित एकाग्र हो रहे जिसको आत्म तत्व का निश्चय है, यह निश्चय आगम से होता है। क्योंकि पहले आगम से जानेंगे और फिर उसी श्रद्धा पूर्वक स्थिरता करेंगे, अतः आगम के अभ्यास में लगना ही सर्वोत्कृष्ट है। साधु के लिए स्वपर का ज्ञान तथा परमात्मा का ज्ञान आवश्यक है, अतः उसे ऐसे ही द्रव्य शुद्ध का अभ्यास करना चाहिए जिसमें स्व और पर के तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हो, फिर ध्यानावस्था में उसी का चिंतन करना चाहिए। यह चिंतन ही स्वार्थ शुद्ध ज्ञान भावना है। आगम के द्वारा जो यहाँ ये ज्ञानात्मक लिया ना इसको, ग्रंथकार ने उसी को प्रथम स्थान दिया है, तभी तो लिखा है कि सदा यानी हमेशा स्वार्थ शुद्ध ज्ञान भावना में संलग्न रहने वाले साधु भी अनादि वासना के वशीभूत होकर परार्थ शब्दात्मक श्रुत में भी उद्यत होते हैं। दूसरे साधुओं से चर्चा वार्ता करते हैं, वार्तालाप करते हैं, यहाँ बात आ गई है ना, दूसरों के साथ भी वचनात्मक हो जाएगी। आपने भी बताया था ना, यह व्यर्थ का वार्तालाप रूप शब्दात्मक श्रुत वस्तुतः सुश्रुत नहीं है। निश्चय से देखा जाए तो वही शब्दात्मक श्रुत वस्तुतः सुश्रुत है जिसके द्वारा शुद्ध आत्म तत्व का प्रतिपादन या पुच्छा वगैरह की जाती है। यहाँ क्या लिखा है, अनादि वासना के वशीभूत होकर अन्य साधुओं से चर्चा वार्ता भी चलती है उनकी, इस संबंधी बात बताई हमने। ऐसा ही सुश्रुत मुमुक्षुओं के लिए इष्ट होता है कहा भी है। उन्होंने वहाँ यच्छुतम यथा उसके लिए मूलाचार की कोई गाथा ऊपर दी है, मेरे ख्याल से वही बोलना चाहिए, वही दूसरों से पूछना चाहिए, उसी की इच्छा करनी चाहिए, उसी में उद्यत होना चाहिए जिसके द्वारा अज्ञानमय रूप को छोड़कर ज्ञानमय रूप प्राप्त होता है। अभी तक इसने अपने को कैसा समझा है, राग रूप समझा है ना, देह रूप समझा है, वो है कैसा तो ज्ञान रूप है, क्योंकि अज्ञानमय रूप को छोड़कर ज्ञानमय रूप प्राप्त हो जाता है। यहाँ नीचे वो उदाहरण दिया है उन्होंने कहाँ से लिया, वो एक नंबर लिखा है ना नीचे फुटनोट में, तद ब्रूया तत्पर अनपृच्छे तदिच्छे तत्परो भवे ये ना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजे। देखो ब्रूयात ने वही बोलना चाहिए, तत्परान पूछेत वही दूसरों को पूछना चाहिए, तद इच्छेत उसी की इच्छा करना चाहिए, तत्परो भवे तत्पर हो यानी तत्पर है उसी में उद्यत होना चाहिए, ये न जिसके द्वारा अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा अविद्यामयने अज्ञानमय रूप त्याग कर विद्यामयम व्रजे यानी ज्ञानमय रूप प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में भी कहा है वह महत ज्ञान में उत्कृष्ट ज्योति अज्ञान की उच्छेदक होती, उच्छेद करना यानी नाश करना, यानी ज्ञान में ज्योति क्या कहते हैं अज्ञान का नाश करती है। महत यानी महान, अतः मुमुक्षुओं को गुरुजनों से उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी की कामना करना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए, यह साधुओं की ज्ञान आराधना है, यानी उसी की बातें करनी चाहिए जिसके द्वारा इस ज्ञानमय पना को हम प्राप्त हो जाए, उसी की चर्चा उसी की। हम दो चार लोग आपस में मिलते तो पहले क्या कहते हैं ना, केम छो यानी पहले शरीर की पूछताछ करते हैं, कितना दुबला हुआ हा? तो सामने वाला भी हो, महिला होगी तो दुबले हो मेरे अच्छा लगता है उसको।
सीजन 10
हाँ। देखो नीचे उसकी फुटनोट दी है दो नंबर की, अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुक्षुभिः। इष्टोपदे अभी मैंने उसका अर्थ बता पढ़ा था, उसी की ये रेफरेंस गाथा, इसको ज्ञानाराधना नाम दिया था। ज्ञानाराधना के पश्चात ग्रंथकार ने चारित्राराधना का कथन करते हुए अक्ष और मन के, ये अक्ष क्या होता है, इंद्रिय को अक्ष कहते हैं, अक्ष और मन के नियमन की बात कही है। हाँ अक्ष अर्थात आत्मा, अक्ष का एक अर्थ होता है इंद्रिय, एक अक्ष होता है आत्मा, वो अक्ष ने हमने वो अक्ष संचार देखा था प्रमाद के भेदों में, उसको भी अक्ष कहते हैं है ना, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आंख भी है अक्ष, जैसे एकाक्ष यानी एक आंख वाला, और एक इंद्रियों के लिए, एक इंद्रियों के लिए भी एकाक्ष कहने की पद्धति है।
कि महत ज्ञान में
अज्ञान
की उच्छेद
ये
पूज्यपाल स्वामी
इष्ट उपदेश
पहले हुए हैं
ना, बहुत पहले,
तो वहाँ पर उन्होंने कहा है जब ये करना है पढ़ने के 10 फायदे, उसमें ये बात बताई कि ये पढ़ने से अज्ञान का नाश होता है, ये कम बात है क्या?
यानी ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान का नाश होना यही ज्ञान का फल है, तो फल नहीं लगता है। नहीं तो पढ़ने से क्या फायदा, दुकान में बैठेंगे तो कुछ आमदनी तो हो जाएगी, इन्हें फायदा नहीं लगता। अज्ञान का नाश होना ये फायदा ही नहीं लगता किसी को। महत ज्ञान में उत्कृष्ट ज्योति अज्ञान की उच्छेदक होती है। देखो ज्ञान आराधना के पश्चात ग्रंथकार ने चारित्र आराधना का कथन करते हुए अक्ष और मन के नियमन की बात कही है। पूज्य पाठ ने सर्वार्थ सिद्धि में अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष आत्मा इस व्युत्पत्ति के अनुसार अक्ष का अर्थ आत्मा किया है। उसी व्युत्पत्ति को अपनाकर ग्रंथकार ने अक्ष का अर्थ इंद्रिय किया है। दोनों ही बातें आई। व्युत्पत्ति यानी शब्द जिस जैसा तैयार होता है उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। यथा योग्य अपने आचरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम होने पर जिनके द्वारा स्पर्शादि विषयों को आत्मा जानता है उन्हें अक्ष कहते हैं। इंद्रिय यानी यहाँ अक्ष और मन के नियम ने उन्हें इंद्रिय के अर्थ में ही लिया है। चारित्र की बात है ना यहाँ पर, इसलिए वे अक्ष है लब्धि और उपयोग रूप स्पर्शन आदि भावेन्द्रिया। देखो ये कोई सूत्र याद है क्या आपको मिली भाई? यहाँ हमें क्या पढ़ा? वे अक्ष है लब्धि और उपयोग रूप स्पर्शन आदि भावेन्द्रिया। लब्धि उपयोग भावेन्द्रिय, भावेन्द्रिय जो होते हैं वो लब्धि और उपयोग रूप होते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? लब्धि यानी जो अभी हम पंचेन्द्रिय जीव है, तो उसकी लब्धि कितनी? तो पांचों इंद्रियों के द्वारा जानने की वो उसकी लब्धि है। और अभी उपयोग किसमें लगा है? तो किसी एक इंद्रिय के द्वारा जानने में लगा है, उसको हम उपयोग कहेंगे। लब्धि में तो कितनी शक्ति पड़ी है उसको लब्धि कहेंगे। कभी कभी लब्धि यानी जो ऑलरेडी ज्ञान की धारा में चलती रहती है पर्याय में, उसको भी लब्धि में ले लेते हैं। जैसे हमारे अभी बाकी सभी विषयों का ज्ञान है, स्कूल में जो कुछ हम पढ़े हैं, आपको अंग्रेजी भी मालूम है, ड्राइविंग भी मालूम है, अन्य रसोई करने की भी मालूम है, अन्य शास्त्रों की भी मालूम है। अभी आपका उपयोग इसमें लगा है शास्त्र स्वाते हैं, तो बाकी वो सब प्रकट पर्याय में है। ऐसा यानी वो ज्ञान की पर्याय इन सबको मिलकर है अभी वर्तमान की, पर वर्तमान में उपयोग इसमें लगा है। हाँ वो है पर्याय में है, परंतु उपयोग अभी उपयोग में नहीं है। हमने जो कुछ सीखा हुआ है वो हमारे पर्याय में है, वर्तमान पर्याय में है, परंतु उपयोग एक में चलेगा। जैसे हम पूछते हैं ना एट ए टाइम एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं पर्याय में, एट ए टाइम मैक्सिमम संख्या मैक्सिमम पूछ रही हूँ, मैं ज्ञान पूछ रही हूँ, मैंने उपयोग रूप नहीं पूछा। चार है ना, मतिष्ठा अवधि मन पर्याय, ये तो इसमें तत्पर सूत्र में सूत्र है ना, एकादिनी भाज्यात युगपत, मैक्सिमम चार ज्ञान एक जीव के एट ए टाइम चार ज्ञान होते हैं। कितनी मुनिराज के मति सूत्र है, अवधि और फिर मन पर्याय, उपयोग किसमें? एट ए टाइम किसी एक में चलेगा। मति ज्ञान में लगेगा तो भी एक किसी इंद्रिय के द्वारा या मन के द्वारा काम चलेगा उपयोग रूप। हम भी जो अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें पांचों इंद्रियों के द्वारा एट ए टाइम जानते हैं एक समय में, परंतु एक समय में किसी एक ही इंद्रिय के द्वारा उपयोग काम करता है। वो इतना फास्ट घूमता है, हमें लगता है कि हम सबको एक एट ए टाइम जान रहे हैं, है ना? हमारी भाषा में क्या करते हैं, हम पांचों इंद्रियों के द्वारा एकदम जानते हैं। कैसे मालूम है क्या आपको? अच्छा भाई, भोजन की थाली लेते हैं ये नो तो, हाँ टीवी के सामने बैठते तो वहाँ उसका विषय एसी चलती है और वो सुनने का भी, और ये सब आ गया ना, स्पर्शन का ठंडा भी आया, देखने का भी आया, सुनने का भी आया, स्वाद का भी आया, हाँ वो तो स्मेल का भी आ गया। तो हम सबको एट ए टाइम जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? लगता है ना, लगता है हमको, परंतु उपयोग इतना फास्ट घूमता है पांचों इसमें कि हमें लगता है हम सभी एट ए टाइम कर रहे हैं, और वो भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त हर इंद्रियों में वो रुक रहा है, तभी उसका ज्ञान होगा। वो अंतर्मूर्त कितना छोटा होगा कि जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा,
प्रत्येक इंद्रिय अंतर्मूर्त,
हाँ यानी आंखों चक्षु इंद्रिय के द्वारा अंतर्मूर्त तक किसी को जाना, फिर वो सुनने में उपयोग लगा, फिर वो स्पर्शन में लगा, ये फास्ट होता है। जैसे हम अंधेरे में वो अगरबत्ती ऐसे जोर से घुमाएंगे जलती हुई तो क्या पूरा सर्कल दिखता है, हम क्या कहेंगे वो उसका इम्प्रेशन रह जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो वो पहले वाली जो चलती है ना, अभी ज्ञान में वो चल रहा है और फिर आगे वाला उसमें आया तो ये पूरा सर्कल दिखा है। फिल्म में क्या होता है या एनिमेशन जो करते हैं उसमें तो इतने फास्ट घुमाते हैं कि ऐसा लगता है वो तो एक कंटिन्यूस है, तो उसकी हर एक एक फिल्म अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये इंद्रियों में इतना फास्ट घूमता है कि वो तो हमें लगता है कि हम सभी को एट ए टाइम जा रहे हैं। हाँ वो तो सूक्ष्म ज्ञान इतना ही नहीं, वही तो क्या असंख्यात समय तक लगातार हम इसको देखेंगे तो ये हमारे चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान में आएगा, फिर वो असंख्यात समय सुनने के लिए, तो वो असंख्यात समय का काल कहो या आवली कहो या दो चार आवली कहो, इतना छोटा है हमारे जो पकड़ में नहीं आता, इतना वो सूक्ष्म काल है। तो समय कितना सूक्ष्म होगा, और एक एक समय का वर्णन कहो या ज्ञान है केवल ज्ञानी के ज्ञान में, और ये सारी कैपेसिटी यहाँ पड़ी है, क्योंकि केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। यहाँ तो भावेंद्रिया क्या है, तो लब्धि और उपयोग मिलकर भावेंद्रिया कहलाती है, यानी भावेंद्रिया को दूसरे शब्दों में बताना है तो क्षोभसम ज्ञान। क्षोभसम ज्ञान कैसा है? लब्धि और उपयोग रूप है।
ये बोलते हैं दर्शन रूपी को जब ज्ञान होता है तो प्रत्येक इंद्रिय के लिए दर्शन उपयोग अलग से होगा कि एक बार दर्शन उपयोग हो जाएगा तो अलग अलग इंद्रियों से वो ही
दर्शन? नहीं, उसके लिए दर्शन उपयोग अलग अलग होगा। मति ज्ञान होता है वो दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है। हमने क्या श्रुत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हो सकता है क्योंकि शुरुआत में एक बार मति ज्ञान हुआ था, परंतु मति ज्ञान के लिए हर बार वहाँ दर्शन उपयोग, क्योंकि हमारा उपयोग देखने में लगा वहां से हटा सुनने के लिए, तो वहां उस संबंधी दर्शन उपयोग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा,
वो भी अंतर्मूलक।
और मति ज्ञान में भी पहले अवग्रह यहाँ हुआ है वो बात चलेगी उसमें भी? तो ये भावेंद्रिया यानी क्षोभसम ज्ञान कैसा है, लब्धि और उपयोग रूप है, और केवल ज्ञान कैसा है?
उपयोग रूप।
हाँ उपयोग रूप, पूरा उपयोग रूप, एट अ टाइम युगपत सब कुछ जानते हैं, यानी अनंत द्रव्यों के, अनंत गुणों की, अनंत काल की पर्याय, हाँ सब युगपत जानते हैं, और वो कुछ लब्धि और उपयोग ऐसा नहीं, उपयोग रूप में, यानी आप लोगों को हमको फैसिलिटी है, किसी को दुर्लक्ष करे और किसी का उपयोग करे, हम कहते ना अरे डोंट उसका निगलेक्ट कर दो, हमको अच्छा नहीं लगता ना, हम उसे को देखो मत।
सर हमेशा बोलते हैं ये फैसिलिटी वितरण करने के बाद ही
मिलती। तो ये केवल ज्ञान तो पूरा ही उपयोग रूप है, तो सब कुछ चीजें उनके ज्ञान में आती है। हम दूसरों के खोटे परिणाम देख देख कर यहाँ ऐसे कषायित हो जाते हैं, कोई वो कषाय खाना चलाता है और यहाँ हम कषाय खाना चाहते हैं। शास्त्र देखे, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम विशेष को लब्धि कहते हैं, वो बताया उन्होंने। क्षोभम विशेष को नहीं, जो देखो पंचेंद्रिय जीव है तो पांचों इंद्रियों संबंधी जानने की शक्ति है, उसको यहाँ क्षोभम विशेष का और इसको लब्धि का। उसके होने पर ही द्रव्येंद्रियों की रचना होती है, क्योंकि किसी अन्य भाव से जब मरकर जीव यहाँ आया है तो उसके ज्ञानावरण का विशिष्ट क्षोभम है। उसकी कितनी, जो हम कहेंगे इंटेलिजेंस कितना है, बुद्धि कितनी है, इनके कर्मों का कितना क्षोभम है, उसके अनुसार वहां रचना होगी। एक इंद्रिय में जाने वाले की एक स्पर्शन इंद्रिय की ही रचना होगी। जो पंचेंद्रिय में जन्म ले रहा है संगी में, वो मन सहित सभी इंद्रियों की रचना होगी। जब असंगी पंचेंद्रिय में जन्म ले रहा है तो उसके क्षोभम उतना ही है, मन संबंधी क्षोभम ही नहीं है, तो उसके मन की रचना भी नहीं होगी। यहाँ लिखा ना कि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम विशेष को लब्धि कहते हैं, और उसके होने पर ही द्रव्य इंद्रियों की रचना होती है। यानी ये लब्धि में तो वही लेना है जितनी शक्ति है, क्षोभम है। हम जो लब्ध रूप कहते हैं ना, चल रहा है, उसके एक्चुअली लब्धि में नहीं लेते हैं उसको, तो वो संस्कार वाली पर्याय में वो है। उसके निमित्त से जो आत्मा का परिणाम होता है वह उपयोग है। ये लब्धि और उपयोग दोनों भावेंद्रिय है। कर्मों में क्षोभम हो रहा है, परंतु यहाँ जीव में उतने ज्ञान, जितनी योग्यता है जीव की, उतना ज्ञान जो है प्रकट ज्ञान है, और उसमें भी उपयोग किसी एक में लग रहा है।
विग्रह गति में जब जीव जाता है तो फिर उसके पास न इंद्रिया है न मन है, ज्ञान तो चालू ही है, तो किस तरह से चालू होता है?
वो लब्धि रूप ले लेंगे हम उसको, क्षोभम है उसका। अभी कहीं कहीं उसका आता है कि उपयोग रूप नहीं है, परंतु वो एक्चुअली उसमें अधिक चर्चा नहीं है। लब्धि तो है ही, एक क्षोभम तो चल ही रहा है, उसका ज्ञान तो है, ज्ञान की पर्याय तो रुकेगी नहीं।
ज्ञान
नहीं, ऐसा नहीं कहा।
किस तरह से होता है ऐसा?
ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कहा।
ये
इंद्रियों से ज्ञान होता है।
मैंने पूछा पूछते नहीं, खाली बोलते
देखो आगे। नो इंद्रियावरण, देखो ये शब्द कैसे तैयार हुआ। इंद्रिया तो पांच है रुमा, नो इंद्रिय किसको कहते मालूम है क्या? नहीं मालूम आपको? मालूम मन को, जिसको ईषत इंद्रिय। जैसे इंद्रिय को एक शब्द है करण, और मन के लिए एक शब्द है अंतःकरण। वैसे इंद्रिया और नो इंद्रिया, वो कषाय और नो कषाय वो बात अलग, कर्म और नो कर्म बात अलग, और ये तो इंद्रिया और नो इंद्रिया। तो नो इंद्रिया का अर्थ होता है मन और उस संबंधी आवरण। जैसे एक इंद्रिय का या असंगे पंचेंद्रिय तक तो क्या है, नो इंद्रिय का तो पूरा आवरण है, और यहाँ क्या है, क्षोभम है। वहां तो सर्वघाती का उदय है, यानी बिल्कुल मन संबंधी ज्ञान का उघाड़ ही नहीं है। तुम कहेंगे नो इंद्रियावरण का सर्वघाती का उदय चल रहा है अभी। वो सर्वघाती देशघाती अभी भूल जाओ, मालूम हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हाँ बताया था। तो नो इंद्रियावरण यानी मन संबंधी ज्ञान का आवरण वाला कर्म की बात है, और वीर्यांतराय का क्षोभम होने पर। क्षोभम का अर्थ हमने देखा था, थोड़ा कम्प्लीट होकर नहीं, थोड़ा ढका है, थोड़ा उगाड़ है ज्ञान में होने पर। द्रव्य मन से उपकृत आत्मा, उपकृत है नहीं, उसके निमित्त से, जिसके द्वारा मूर्त और अमूर्त वस्तु को जानता। अमूर्त को जान सकता है कि नहीं आत्मा? इंद्रियों के द्वारा के मन के द्वारा? इंद्रिया तो रूपी पदार्थ को जानेगी, पर मन को तो दोनों को जानेगा, क्योंकि मन के द्वारा तो हम देखी हुई चीजों को भी स्मरण करेंगे या अरूपी। जैसे हम मन के द्वारा तो नक्की करें ना, ये धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है, वो तो आकाश द्रव्य है जीव द्रव्य है, तो हम जान ही तो रहे उसको, सुखदेव ये मन के द्वारा रूपी और अरूपी दोनों को जानेंगे। तो मन का कार्य क्या क्या है वो यहाँ बता रहे हैं। मूर्त और अमूर्त वस्तु को जानता है, गुण दोष का विचार। गुण दोष का विचार यानी कोई चीज अपने लिए इष्ट है कि अनिष्ट है, ये हित अहित का विचार जिसको कहेंगे हम। असंगी तक के जीवों को ये विचार नहीं है, आपके वो कोई स्वीट पदार्थ रखा है खाने का मीठा और वहां उसके ऊपर मक्खी आकर बैठती है, या हलवाई की दुकान में आपने देखा होगा वो हाथ में वो पकड़ता है वो मारने का कुछ और उसको हटाता है तो क्या होता है मक्खी फिर वापस वहां। तो अपने ये अहितकारी है, अपने लिए नुकसानकारक है, ये ऐसा विचार नहीं है। तो गुण दोष का विचार, स्मरण। स्मरण ने पहले देखी हुई सुनी हुई है या कोई जो बात है उसका स्मरण किसको हो सकता है, जिसके पास मन है। मन के बिना वो स्मरण का स्मृति का कार्य नहीं हो सकता, इसलिए स्मरण आदि का प्रणिधान रूप से विकल्प करता है वह भाव मन है। कहा भी है प्रणिधान, निदान ज्ञानात्मक आदि का प्रणिधान। प्रणिधान का मुझे एग्जैक्ट अर्थ नहीं मालूम है, स्मरणादि प्रणिधान के अभिमुख। नीचे क्या लिखा है, गुण दोष विचार स्मरणादि प्रणिधान आत्मनो भाव मन तदभिमुख सेवानुग्राही पुद्गलोच्चयो द्रव्य मन। प्रणिधान धारणा में लेना वो तो मति ज्ञान का भेद हो जाता है, और फिर बाद में वो जो धारणा तक पहुंचा है वो स्मृति में ले सकता है। स्मरण आदि का प्रणिधान रूप से विकल्प करता है, आदि में वो सब आ जाएगी। स्मृति प्रत्यभिज्ञान हाँ, तर्क अनुमान आदि के जो वो सारे आदि का प्रणिधान रूप से विकल्प
जमता नहीं
हाँ? हाँ वो सभी ज्ञान है, वो किसके हो गए, जिसके मन है, परंतु वो आदि में आ गए, स्मरण आदि में वो आ गए। कौन सा, स्मृति प्रत्यगी भान तर्क अनुमान ये सारे क्या है, वो मन के द्वारा। आगम भी जो हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और फिर स्मरण में रहेगा तो ही हम हाँ उसका, ये मन के द्वारा ही हो सकता है। संगी पंचेंद्रियों को ही सम्यक दर्शन क्यों हो सकता है, क्योंकि जो तत्व सुने हैं समझे हैं उसका अर्थ ग्रहण किया है उसको याद में रखा है मन के द्वारा, ये सही है ऐसा नक्की किया है।
मिल गया मेरे को, लेकिन इसमें बैठता नहीं है। प्रणिधान का अर्थ यहाँ लिखा है समाधि ध्यान भक्ति उपासना और कर्म त्याग।
अच्छा, स्मरण आदि का प्रणिधान रूप से विकल्प करता है।
समाधि ध्यान भक्ति उपासना और कर्म त्याग
ध्यान रूप से स्मरण ध्यान वो बैठता
है। उपासना रूप से त्याग रूप
से
उपासना ले सकते हैं, परंतु गुण दोष विचार स्मरणादि प्रणिधान आत्मनुभाव। उसमें क्या मिल गया क्या आपको प्रणिधान? हाँ आपको ही डीप डिवोशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड,
स्मरण आदि का
हाँ, यानी एकाग्रता जो है वो मन के द्वारा होती है। प्रणिधान में एकाग्रता ले सकते हैं हाँ, एकाग्रता चिंतन ध्यान आपने उसमें ध्यान ले हाँ, एकाग्रता का ही अर्थ ध्यान भी हो सकता है। एकाग्रता और ध्यान आप लिखो, कहा भी है आगे को पढ़ रही हूँ मैं। आत्मा के गुण दोष विचार स्मरण आदि प्रणिधान को भावमन कहते हैं, और गुण दोष का विचार तथा स्मरणादि प्रणिधान के अभिमुख आत्मा के अनुग्राहक पुद्गलों के समूह को द्रव्यमन कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, ये जो स्मरण करना वगैरह जो आत्मा का परिणाम है वो भावमन है, और उसमें निमित्त कौन है, पुद्गल का जो द्रव्यमन, द्रव्यमन यानी पौद्गलिक रचना, जैसे ये इंद्रिया है, आंख कान वगैरह इंद्रिया है, ये बाह्य उसके हम उपकरण देख रहे हैं, परंतु है तो द्रव्य इंद्रिया, वो शरीर की रचना है। वैसे ही द्रव्यमन क्या है, तो शरीर की रचना है, उसके द्वारा जानने वाला तो आत्मा है, यानी वो जो उसके द्वारा जो ज्ञान की पर्याय हो रही है वो तो भावमन, और उसमें जो निमित्त है वो द्रव्यमन। जैसे कंप्यूटर पर बैठकर आपने जो कुछ उसमें से आप कुछ फीड कर रही है, उसमें डेटा कुछ मिल रहा है, वो तो उसके निमित्त से जानने वाली तो आप हो, वैसे वो कंप्यूटर का जो काम है वो तो यहाँ तो मन के द्वारा हो रहा है। आजकल वो नहीं हो रहा है ना, इसलिए वो हम क्या सोचते हैं, हमने तरक्की की, कैलकुलेटर के बिना वो तो हमारे हिसाब नहीं हो सकते। तो पहले के जमाने वालों को नहीं लगता था, उनका फास्ट होता था कैलकुलेशन, अभी भी क्या। तो कहते हैं वो स्मरणादि प्रणिधान के अभिमुख, यानी जो स्मरण आदि चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला, एकाग्रता होने वाला जो आत्मा है, उसके अनुग्राहक, अनुग्राहक का अर्थ होता है उपकारी, उपकारी निमित्त, पुद्गलों के समूह को द्रव्यमन के अनुग्राहक यानी निमित्त, यहाँ उसका एक्चुअली अर्थ होता है उपकारक, उपकारक यानी निमित्त, उपकार यानी कोई, जैसे कोई किसका उपकार कर रहा है ना, वो तो हाँ फेवर कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, उपकार का अर्थ ही होता है निमित्त, क्योंकि ऐसी भाषा है जिसको हम लौकिक में किसी का उपकार करना नहीं, उसको वो अलग है, ओबलाइज करना, वो बात नहीं है, नहीं तो पुद्गल आत्मा को ओबलाइज कर रहा है। यह तप आराधना है, क्योंकि इंद्रिय और मन के द्वारा नियम के अनुष्ठान का नाम तप है। क्या कहा, नियम का अनुष्ठान, यानी कोई हमने नियम कर लिया, व्रत अंगीकार कर लिया, एक कंट्रोल किया ना इंद्रियों के, और मन जो अन्य चीजों में जाता था उसको हमने आत्मा में एकाग्र किया, तो उसको नियमन किया कहीं, तो उसका अनुष्ठान का एक्चुअली अर्थ होता है रिचुअल कोई भी, तो उसका नाम है तप है। यानी इंद्रिय और मन के द्वारा नियम के अनुष्ठान, यानी उनका नियमन करना, कंट्रोल करना, उसको हम कहेंगे तप। ऐसा आगम में कहा है, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि बाह्य चीजों की अपेक्षा इसका वर्णन किया है। आगे ध्यात्वा इत्यादि पदों के द्वारा ग्रंथकार ने निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन किया है। ध्यात्वा यानी ध्यान करके, एक ही विषय में मन के नियमन को ध्यान कहते हैं। नियमन करना है उसी को लगाना, मन को एक ही विषय में लगा ले, एकाग्र किया उसमें। जब चिंता के अनेक विषय होते हैं तो वह चंचल रहती है, चिंता कहो या उपयोग कहो या मन कहो, एक ही बात, यहाँ एक अर्थ में लिया है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, चिंता यानी टेंशन के अर्थ में वो चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि मराठी में चिंता उसको, हमारी बहुत चिंता हो रही है, चिंता ने हमको बहुत टेंशन आया है, उसके बारे में हमको वरीज हो रहे हैं। तो कहते जब चिंता के अनेक विषय होते हैं तो वह चंचल रहती है, यानी हमारा मन हम अनेक विषयों के तरफ चंचल है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी के सामने बैठे हो भैया, और हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है, और वहाँ एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई, तो क्या करते हैं, अरे इधर के उधर, उधर के उधर, किधर किधर किधर, क्या चल रहा है, क्यों, क्या चल रहा है, कहाँ चंचल मन। तो कहते कि चिंता के अनेक विषय होते हैं तो वह चंचल रहती है, उसको सब ओर से हटाकर एक ही विषय में संलग्न करना ध्यान है। अब वैसा ध्यान तो हम लौकिक में भी करते हैं, अन्यत्र से उपयोग हटा तक किसी एक में लग जाता है। तुम तो हम बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं, है ध्यान से करो, वहाँ दूध उबल रहा है तो क्या कहते ध्यान उधर, तो जरा हट गया तो क्या होता है और वो ड्राइविंग करते समय क्या सामने, हाँ ध्यान और गया इधर उधर तो
गया।
तो यहाँ अन्य की बात नहीं है, लौकिक की बात नहीं है ध्यान की। देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले में पहले ध्यान किसको कहना वो बता दिया कि चिंता यानी जो अपना उपयोग है या ज्ञान है वो सब ओर से हटाकर एक ही विषय में संलग्न करना यानी लीन करना वो ध्यान है। इस ध्यान का विषय, अभी हम मोक्ष मार्ग में बात है, तो इस ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, तो कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित, द्रव्य कर्म यानी आठों कर्म, भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष के परिणाम, जीव के विभाव भाव तथा मिथ्या अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी अभिप्राय यानी मान्यता, मिथ्या मान्यता या मिथ्या ज्ञान के लिए भी अभिनिवेश शब्द आता है कभी कभी, संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित में रहित लिखा है। देखो मिथ्या भी निवेश यानी मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या श्रद्धा जिसको हम कहेंगे, मिथ्या दर्शन जिसको हम कहेंगे। आगे क्या लिखा है अश्विन भी आप बताएंगे, संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित ज्ञान, ये तीनों को कैसा ज्ञान कहेंगे, मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान के तीन लक्षण बताए, विपर्य ने उल्टा विपरीत, जैसी वस्तु स्थिति है वैसा नहीं जान रहा, उल्टा सुल्टा जान रहा है, उसको कहेंगे विपर्य। संशय ने नक्की नहीं करना ये सच्चा है कि वो सच्चा है, आगम में तो ऐसा लिखता है, हम तो ऐसा नहीं लगता है, डाउट आता है, निर्णय नहीं कर पाता, वो भी मिथ्या ज्ञान है। अनध्यवसाय ने अरे कुछ तो है, कुछ तो होगा, ज्ञान हो रहा है परंतु वो बिल्कुल निर्णय नहीं है, ये तो संशय वाला तो दो टोकों में तो दो लायमान है, ये तो कुछ तो है ऐसा, तो कहते हैं ये भी मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। तो इन तीनों से रहित ऐसा जो ज्ञान है उस स्वरूप या परम औदासीन्य रूप, देखो यहाँ मिथ्या अभिवेश निवेश से रहित,
ये से चाहिए ना, वहां मैं लिखा है
वो से रहित, वो सबसे रहित ही नहीं, मिथ्या अभिनिवेश से रहित, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित ज्ञान स्वरूप, या परम औदासीन्य रूप यानी चरित्र की अपेक्षा बताए, उदासीन का हाँ निर्मल आत्मा होती है किसका, ये आत्मा को क्यों याद किया, ध्यान का विषय कौन है उसकी बात है, यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है, ये मिथ्या अभिनिवेश रहित है, मिथ्या ज्ञान रहित है, इस तरह से ऐसी आत्मा का ध्यान करने वाले आनंद से ओतप्रोत शुद्ध स्वात्मानुभूति के कारण अत्यंत तृप्त होते हैं, यानी ऐसे निर्मल आत्मा का ध्यान करने से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, पर्याय में वो प्रकट हो जाता है, वो तो प्रोत यानी जैसे लबालब भरा हुआ ऐसा, उसके कारण क्या होता है अत्यंत तृप्त होते हैं, ध्येय में भी उनकी वितृष्णा रहती है। कहा भी है अधिक कहने से क्या, तात्विक रूप से श्रद्धान करके तथा जानकर ध्येय में भी मध्यस्थ भाव धारण करके इस समस्त तत्व का ध्यान करना चाहिए, यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। नीचे उसका रेफरेंस दिया होगा दो नंबर, तत्वानुसार है कि तत्वानुशासन है क्या, ठीक हम पढ़ेंगे उसको, किमत्र बहुनो उक्तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्वतः देयम् समस्तमप्येतन् माध्यस्थम् तत्र बिभ्रता तत्वानुशासन तत्वानुसार नहीं तत्व तत्वार्थ सार है तत्वानुशासन ही होगा। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे द्रव्य संग्रह में कहा है आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्य में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय नहीं रहता। ये क्यों नहीं रहता प्रेरणा भी और सम्यक दर्शन ये सभी सम्यक दर्शन कहो सम्यक ज्ञान कहो सम्यक चारित्र कहो ये आत्मा की पर्याय है अन्य द्रव्य में नहीं रहते। इसलिए रत्नत्रय में आत्मा ही मोक्ष का कारण है यानी जिस आत्मा के ये पर्याय में प्रकट हुआ है वह आत्मा ही मोक्ष का कारण है। द्रव्य को पर्याय को इकट्ठा करके ये पूर्व पर्याय रूप से द्रव्य है रत्नत्रय और उस वही द्रव्य मोक्ष का कारण है मोक्ष उसके आगामी पर्याय है यानी पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य को आगामी पर्याय युक्त वो द्रव्य का कारण कहने में आता है ये पद्धति है शास्त्र की। रत्नत्रय में आत्मा कारण है क्योंकि पर्याय पर्याय का कारण नहीं हो सकता उस पर्याय युक्त द्रव्य को कारण का क्योंकि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती द्रव्य में से उत्पन्न होती है क्योंकि प्रत्येक पर्याय तो एक समय मात्र रहती है जो स्वयं विनष्ट हो गए वो दूसरे को पैदा कैसे करेगी इसलिए उस पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को कारण कहने में आता है। मोक्ष की प्राप्ति कर्मों का निर्मूलन किए बिना नहीं होती निर्मूलन यानी परिपूर्ण नाश हुए बिना वो अभी तक तो बंद अवस्था थी उसकी बंधे हुए सब पूरे के पूरे निकल नहीं जावे तब तक मोक्ष अवस्था नहीं होगी। मिथ्या दर्शन आदि से परतंत्र आत्मा के द्वारा जो किया जाता है बांधा जाता है उसे कर्म कहते हैं यानी जीव स्वयं परवश हो रहा है पराधीन हो रहा है परतंत्र हो रहा है और ऐसे आत्मा के द्वारा जो बांधा जाता है उसको यहाँ कर्म का आत्मा की परतंत्रता में निमित्त ज्ञानावरण आदि अथवा आत्म प्रदेशों के हलन चलन रूप कर्म को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं ये ज्ञानावरण आदि जो आठ है उसको कर्म कहेंगे या आत्म प्रदेशों के हलन चलन रूप को कर्म कहेंगे। समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म या घाती कर्म और अघाती कर्म का क्षय करके अनादि मिथ्या दृष्टि या सादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव अनंत ज्ञान आदि जिन आठ गुणों से सदा शोभित होते हैं पूरा वाक्य बाद में पढ़ेंगे। देखो यहाँ सिद्धों की बात चल रही है मुक्त अवस्था की बात हो रही है तो कहते समस्त द्रव्य कर्म थोड़े बाकी रहेंगे तो चलेगा कि नहीं तो समस्त द्रव्य कर्म समस्त भाव कर्म दूसरी पद्धति से बोलना है तो घाती कर्म अघाती कर्म द्रव्य कर्मों को दो में विभाजित किया उनका क्षय करके क्षय ने वो सत्ता में पड़े हुए पूर्ण निकल जाएंगे उसको हम कहेंगे क्षय हो गया। अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि परंतु एक कंडीशन लगाई भव्य जीव अभव्यों के तो सम्य दर्शन भी नहीं होगा मोक्ष तो की बात ही अलग तो क्या होते अनंत ज्ञान आदि आठ गुणों से सदा शोभित होते हैं आठ कर्मों के नाश से आठ गुण प्रकट होते हैं ऐसे कहेंगे कहने की पद्धति ऐसी तो क्या आठ ही गुण है क्या सिद्धों में कितने अनंत गुण है और अनंत गुण पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त हुए हैं परंतु आठ की मुख्यता से बात करेंगे आप सिद्धों के कितने गुण होते तो कहेंगे आठ गुण होते आठ गुण नहीं वो पर्याय तो कहते अनंत ज्ञान आदि जिन आठ गुणों से सदा शोभित होते सदा इन्हें कायम के लिए एक बार ये मुक्त अवस्था प्रकट हुई परिपूर्ण अवस्था हुई तो ये कायम के लिए रहेगी यानी हर समय की पर्याय नहीं होगी परंतु हमेशा वो स्वभाव रूप ही परिणमन चलेगा अनंत काल तक। उनमें सबसे उत्कृष्ट गुण सुख है, क्योंकि सभी उसे चाहते हैं। हम चाहते कि नहीं चाहते हैं, रात दिन तो सुखी होने के ही प्रयत्न हो रहे हैं ना, भोजन करते हैं तो भी सुखी होने के लिए, और सो जाते हैं वो भी सुखी होने के लिए, आराम करते। योग के द्वारा भी कर्म का बंध होता है, उसको भी लिया है आत्म प्रदेशों के हलन चलन को, और जो भाव कर्म में एक्चुअली परिणामों की चंचलता भी लेना है। आत्म प्रदेशों की चंचलता को तो हम योग कहेंगे, और परिणामों की चंचलता को कषाय कहेंगे, और कषाय और योग से बंध होता है, कर्म बंध होता है। मोहनीय कर्म के क्षय से परम सम्यक्त्व या परम सुख प्राप्त होता है। देखो, मोहनीय कहा, केवल दर्शन मोहनीय नहीं कहा, दर्शन और चारित्र मोहनीय दोनों के क्षय से परम सम्यक्त्व या परम सुख प्राप्त होता है, यानी अनंत सुख हम परम सुख कहेंगे यहाँ पर। ज्ञानावरण के क्षय से अनंत ज्ञान और दर्शनावरण के क्षय से अनंत दर्शन गुण प्रकट होते हैं। गुण प्रकट होना यानी पर्याय प्रकट होना। शास्त्र में कहीं कहीं पर्याय के लिए भी गुण कहेंगे, जैसे सिद्धों के 8 गुण बता रहे हैं, है तो पर्याय। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट होता है। वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है, या इंद्रियजन्य सुख का अभाव होता है, परम अति इंद्रिय आनंद का प्राप्ति होती है ना वहां पर। आयु कर्म के क्षय से परम सौख्य की प्राप्ति या जन्म मरण का विनाश होता है। सूक्ष्मत्व यहाँ जन्म मरण का नाश होना इस तरह से लिया उन्होंने। वो तो परम सौख्य उसके लिए हो गया। आयु कर्म में उन्होंने परम सौख्य क्यों लिया, जन्म मरण का विनाश है इसलिए लिया होगा शायद। मूल में लिखा है जो उन्होंने संस्कृत में क्यों नहीं। सिद्धों के हो जाते हैं। देखो, नाम कर्म यहाँ क्या लिखा है पढ़िए पहले। नाम कर्म के क्षय से परम अवगाहना या अमूर्तत्व प्रकट होता है। गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघुत्व या दोनों कुलों का अभाव प्राप्त होता है। इस उच्च और गोत्र जिसको हम कहेंगे, उच्च कुल नीच कुल, इस तरह जिन्होंने स्वात्मोपलब्धि, स्व आत्मा की उपलब्धि ने प्राप्ति लाभ, स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ये तो कर्म की भाषा में कहना है तो सभी कर्मों का नाश हुआ, परंतु यहाँ उनको क्या मिला, तो परिपूर्ण रूप से आत्मा की उपलब्धि हुई, जैसा स्वभाव है वैसा परिपूर्ण प्रकट पर्याय में हो गया। वे सिद्ध सर्वप्रथम ग्रंथकार की आत्मा में और पश्चात उसके पाठकों की आत्मा में स्व संवेदन के द्वारा सुस्पष्ट हुए, यह ग्रंथकार की भावना है। क्या कहा, उनके अपने आत्मा में और सामने पाठकों के लिए कैसे सुस्पष्ट हो गए, सिद्ध तो स्व संवेदन के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा, ऐसा कह रहे, तभी तो हमने सिद्धों को जाना कहने में आएगा। सारांश यह है कि अंतरंग व बहिरंग कारण के बल से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, पहले बात आई थी ना ये सब, फिर समस्त परिग्रह को त्याग कर सदा सम्यक श्रुत ज्ञान की भावना में तत्पर रहते हुए, सम्यक श्रुत ज्ञान में अंतरंग में स्थिरता भी ली है और स्वाध्याय रूप वो भी लिया, समस्त इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से हटाकर, इंद्रियां तो अपने अपने विषय के सम्मुख होती है उपयोग वहां से हटाकर अपनी शुद्धात्मा को शुद्धात्मा में स्थिर करके, उपयोग कहां भटक रहा है? पर हमारे पास ज्ञान कितना है? थोड़ा बहुत, सूक्ष्म ज्ञान इतना सा है और लगाया है अनंतों में और भगवान के पास है अनंत ज्ञान और लगाया है एक में, तो क्या होगा? वो सूर्य की किरणें भी हम देखे, वो तो ग्लास में से, वो जो क्या कहते हैं उसको, हाँ लेंस, लेंस कहते हैं,
कॉन्सेंट्रेट करते हैं,
हाँ तो क्या होते हैं वो किरणें, ऐसी कॉन्सेंट्रेट होती है और वो तो आंख भी लग जाती है, पेपर हो या कपास हो तो जलने लगता है, यानी वो किरणें कॉन्सेंट्रेट होती है तो उसमें इतनी शक्ति होती है। ऐसे अपना उपयोग हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने में ही तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, इतनी शक्ति है उसमें। तो यहाँ लिखा ना, देखो इंद्रिय और मन को अपने अपने विषयों से हटाकर अपनी शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा में स्थिर करके उसमें भी तृष्णा रहित होकर घाती कर्मों को नष्ट करके, ये घाती कर्मों को नष्ट करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, विधि क्या है? आत्मा में स्थिर हो जाना, वो कर्म अपने आप चले जाएंगे। घाती कर्मों को नष्ट करने के लिए कोई वो उसके साथ लड़ने नहीं जाना है, परंतु कथन में आएगा उसने घाती कर्मों को नष्ट किया, उसने क्या किया, वो आत्मा में स्थिर हो गया, तो शुद्धात्मा में लीन होकर घाती कर्मों को नष्ट करके स्वाभाविक निश्चल चैतन्य स्वरूप होकर, क्या कहा, स्वाभाविक यानी वो स्वभाव ही है निश्चलता, चैतन्य तो चैतन्य है, वो निश्चल रहने का तो आत्मा का स्वभाव है, जैसे सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है, क्या वैसे वितराग का स्वभाव नहीं है? तो सिर हो, हमें विकल्प उठा उठा कर पर का लक्ष्य कर करके रागी द्वेषी होते रहते हैं, तो कहते स्थिर हो जाओ अपनी आत्मा में, तो वितराग तो स्वभाव है, वो तो प्रकट होगा ही होगा, वो स्वाभाविक है, सहज है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आत्मा का स्वभाव ही है वितराग और सर्वज्ञता का, वो स्वभाव प्रकट हुए बिना तो रहेगा नहीं। जैसे पानी का स्वभाव तो ढलान की ओर बहना है, तो वो तो अपने आप बहता है, उसके लिए कोई खींचना नहीं पड़ता, चलो अभी वो तो पर्वत से नीचे आ जाओ करके, अभी अपने यहाँ भी कहीं कुछ लीकेज होता तो नीचे नीचे आता ही रहता है। ऐसे ही आत्मा में स्थिर होने का प्रयत्न करो तो उपयोग स्वयं अपनी आत्मा की तरफ डर जाएगा। पुनः आघाती कर्मों को भी नष्ट करके पहले स्वाभाविक निश्चल चैतन्य रूप होकर यानी अरिहंत अवस्था प्राप्त की, घाती कर्मों को नष्ट किया ना पहले, फिर अघाती कर्मों को भी नष्ट करके यानी 14वें में अभी अघाती है उसको भी नष्ट करके लोक के अग्रभाग में स्थिर होकर सिद्ध परमेष्ठी लोकाग्र में जाकर विराजमान होते हैं, जो सदा केवल ज्ञान केवल दर्शन सम्यक्त्व और सिद्धत्व भाव से शोभित होते हैं, वे भगवान सिद्ध परमेष्ठी नौ आगम भाव रूप से, एक सी चर्चा हम कल करेंगे, अभी वाक्य पढ़ लेते हैं, मेरे में स्वात्मा का दर्शन देवे, अर्थात मैं उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, बाकी चर्चा कर
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमः सदा देतो।